नमस्कार भारत, तारीख 18 दिसंबर, दिन सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। कुछ ही घंटों में सामने होंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे। मतगणना से पहले भी जारी है अटकलों का सिलसिला।
मुझे लग रहा है कि दोनों की बराबर की टक्कर होगी और दोनों शायद आधे आधे में सिमट जाएंगे।
बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी आएगी।
हिमाचल प्रदेश में वोटिंग के एक महीने बाद आज आने वाले चुनाव परिणाम क्या बदल पाएंगे तीन दशक पुराना ट्रेंड?
आज हिमाचल प्रदेश में वो एक परंपरा के टूटने या रहने का फैसला होना है। असल में यहाँ पे 1985 से लेकर आज तक किसी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है।
जानेंगे नतीजों को लेकर कैसी है तैयारियाँ, किस तरह का है उत्साह, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को और गुजरात में दो चरणों में 9 और 14 दिसंबर को मतदान समाप्त हुए थे। गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान टेलीविजन इंटरव्यू देने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिए गए कारण बताओ नोटिस को चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उस कानूनी प्रावधान का फिर से अध्ययन किया जाएगा जिसके तहत ये नोटिस जारी किया गया था। अमेरिका ने पुष्टि की है कि उसकी खुफिया एजेंसी ने रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग के एक गिरजाघर पर हमले की योजना को नाकाम करने में उसकी मदद की थी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने बयान में कहा है कि इसके लिए उन्हें धन्यवाद कहा गया है और रूसी प्रशासन ने एक बड़े हमले को अंजाम दिए जाने से पहले संदिग्धों को पकड़ लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धन्यवाद के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। बातचीत में ट्रंप ने खुफिया सहयोग के महत्व पर बल दिया है। दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष सिरिल रामाफोसा और पूर्व विदेश मंत्री गोसाजाना लमिनी जुमा को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए औपचारिक रूप से नामांकित किया है। तकरीबन 5,000 पार्टी प्रतिनिधि सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान करेंगे। रामाफोसा को जहां व्यावसायिक समुदाय का समर्थन है, वहीं जुमा जनता में अधिक प्रसिद्ध हैं।
As things stand, comrades, we have two candidates for the position of president.
साथियों, हमारे पास अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार हैं, कॉमरेड सिरिल रामाफोसा और कॉमरेड गोसाजाना लमिनी जुमा। क्या हमारे पास अध्यक्ष पद के लिए कोई और नामांकन है? मुझे कोई और हाथ नहीं दिखाई दे रहा। हम प्रक्रिया समाप्त करने के लिए एक बार और अंतिम सूची को अधिकारियों को दिखाएंगे। ये थे मतदान प्रक्रिया देख रही निदेशक बॉन्टल पकान्याने के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्डोगन ने कहा है कि वह फलिस्तीनियों के लिए पूर्वी यरूशलम में दूतावास खोलना चाहते हैं। अपने भाषण में एर्डोगन ने कहा कि वहां पहले से एक वाणिज्य दूतावास है, हालांकि इसराइल इस शहर का नियंत्रण करता है जो इसे अपनी राजधानी बताता है। तुर्की के राष्ट्रपति ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की निंदा की है।
Fakat Kudüs şu anda işgal altında olduğu için ne yapamıyoruz? Oraya gidip
यरूशलम अभी कब्जे में है, हम वहां जा नहीं सकते हैं और अपना दूतावास खोल नहीं सकते हैं। हालांकि हमारे वाणिज्य दूतावास वहां है जो राजदूत स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम वहां अपना दूतावास खोलेंगे। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्डोगन के शब्द। चिली के राष्ट्रपति चुनाव में रूढ़िवादी अरबपति सेबास्टियन पिनियारा ने जीत दर्ज की है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति पिनियारा के पक्ष में 55% वोट पड़े, वहीं उनके वामपंथी प्रतिद्वंद्वी अलेखेंद्रो ईयर को 45% वोट मिले हैं। पिनियारा ने वादा किया है कि वो टैक्स कम करेंगे और अर्थव्यवस्था को तेजी देंगे। लेबनान पुलिस ने बताया है कि बैरूत में ब्रिटेन के दूतावास में काम करने वाली एक ब्रिटिश महिला मृत पाई गई हैं। रिबेका डाइक्स नामक महिला का शव शनिवार को एक मुख्य सड़क के किनारे पड़ा मिला। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने तेहरान की जेल में कैद स्वीडन के ईरानी व्यक्ति का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने इसराइल के लिए जासूसी की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। आज है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम का दिन, यानी बीजेपी और कांग्रेस के कड़े इम्तिहान के नतीजों का दिन। कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बन रही है और किसे विपक्ष में बैठना होगा। पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं कि उनकी जीत होने जा रही है। आइए सुनते हैं, एक टीवी चैनल से बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा था।
रैली और चुनाव दो अलग चीजें होती हैं, और मैं मानता हूं पूरे गुजरात का मेरा दौरा समाप्त हुआ है। इसमें गए 10 बार छोड़कर जबरदस्त वेव भारतीय जनता पार्टी की दिशा में जा रहा है। हो सकता है आज आपको दिखाई न पड़े, काउंटिंग के दिन 12 बजे मुझे फोन करना, 150 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी।
कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इन चुनावों में एक अलग अंदाज में नजर आए थे। सुने उन्होंने क्या कहा था।
I'm pretty certain that Congress will win the election. I mean, there's a definite undercurrent. We're going to win the election.
And राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी। लेकिन अब वादों और दावों का दौर खत्म हो चुका है और कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रुख करते हैं गुजरात के अहमदाबाद का। अहमदाबाद 1990 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2012 के चुनावों में यहां की 16 में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। यहां के मणिनगर चुनाव क्षेत्र से नरेंद्र मोदी लगातार 2002, 2007 और 2012 में जीते हैं। बाद में 2014 में बीजेपी के ही सुरेश पटेल ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। आज यहां क्या हलचल है, जानने के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता विनीत खरे से।
आज बड़ा दिन है गुजरात के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। भाजपा पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से एक के बाद एक राज्य जीतती आई है, तो एक तरह से उसके लिए नाक का सवाल है कि अपना राज्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य, वो कैसे वहां पर उनका परफॉर्मेंस रहता है। जिन सीटों पर आज सभी की निगाह रहेगी, या फिर कहीं जिन इलाकों पे में आज सबकी निगाह रहेगी, वो है जैसे राजकोट वेस्ट, जहां से अभी जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेहसाना से पर सबकी निगाह इसलिए रहेगी क्योंकि वहां पर एक तो पाटीदारों का काफी एजिटेशन रहा है और वो पाटीदार डोमिनेटेड इलाका है, प्लस यहाँ पर वार्ड नगर है जो प्रधानमंत्री का होम इलाका है, उनका घरेलू इलाका है। इसके अलावा सूरत पर सभी की निगाह रहेगी, जिस तरह से वहाँ एजिटेशन हुए हैं जीएसटी को लेकर, और जो बीजेपी का कोर वोटर है ट्रेडर्स, वो बाहर निकले हैं, उन्होंने प्रदर्शन किए हैं। इसके अलावा आनंद है, वो मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया उसे कहा जाता है, वहां पर सभी की निगाह रहेगी। भावनगर वेस्ट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं जीतू वगानी, उनका सीधा मुकाबला है शक्ति सिंह गोहिल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा अहमदाबाद पर तो सबकी निगाह रहेगी। मेन सिटी में जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोगों की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उसको देखना होगा कि वो जीएसटी या फिर कैश बैन को लेकर जो एक नाराजगी, वो क्या उस पर क्या असर पड़ता है भाजपा पर या फिर नहीं।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय कुमार रमणीक लाल रूपाणी राजकोट पश्चिम सीट से खड़े हुए हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के जयंती भाई भगवान जी भाई कलारिया से है। राजकोट में मतगणना के लिए और उसके बाद निकलने वाले विजय जलूस वगैरह के लिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता हिमांशु भयानी ने बात की राजकोट के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत से।
राजकोट जिले के कुल 8 सीटों का मतगणना का काम यहाँ पे राजकोट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में है। ये सारी चीजें अच्छी से व्यवस्था, मतगणना और उसके बाद की भी पूरी व्यवस्था अच्छी से जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे नोटिफिकेशंस किए हैं। जो दूसरे हमारे नोटिफिकेशंस हैं जो शहर में लागू हो रहे हैं कि कोई भी 4 आदमी से ज्यादा कोई भी इकट्ठा होगा तो विदाउट पुलिस की परमिशन से कोई इकट्ठा नहीं होगा। कोई किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन हो, इलेक्शन रिलेटेड, या कोई रैली हो या सभा हो, विदाउट द परमिशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, जिसमें आरओ और पुलिस के बिना मंजूरी की कोई नहीं निकाले, इस तरह के नोटिफिकेशन किए गए हैं। कोई किसी प्रकार के वेपन, लाठी डंडे वगैरह कोई साथ ले ना जा सके, उसके नोटिफिकेशन किए गए हैं, जिससे शहर में पूरी मतगणना के समय और मतगणना के बाद भी माहौल खूब अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से पूरा दिन जो है ये गुजरे, इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर लिया है।
लेकिन राजकोट में सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में पुलिस कमिश्नर ने कहा।
राजकोट तो पहली बार बात करें तो सौराष्ट्र का सेंटर है और यहाँ से काफ़ी जारे जब ये कन्वेंसिंग हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट हुए थे, 906 जितनी सभाएं हुई थी। और यहाँ से हमारे स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा भी जितने भी आप पूरे देश भर के वीआईपीज की बात करें तो सभी ने यहाँ पे जो प्रचार किए थे जो है, सभी लोग यहाँ पे आए थे। राजकोट को सेंटर बनाया था जो है, और उस इस वजह से राजकोट एक ऐसी जगह अगल बगल 11 जिलों को यहाँ पे को रिप्रेजेंट करता है राजकोट, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा राजकोट लाइमलाइट में भी रहा, प्रचार के समय भी रहा और अभी भी है राजकोट में, और इसीलिए हम लोग तो ज़्यादा यहाँ पे जो है इंतजाम रखने पड़ रहे हैं।
बीबीसी संवाददाता हिमांशु भयानी इस वक्त राजकोट से फोन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कैसी हलचल है इस वक्त वहाँ? आज काफी अहम दिन है आज।
बिल्कुल अहम दिन है, कल मैंने कई लोगों से भी बात की। राजकोट में एक तरीके का माहौल ऐसा है क्योंकि ये राजकोट अगर आप देखें, राजकोट भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, सबसे सुरक्षित बैठक मानी जाती है। 1952 में सबसे पहली जनसंघ की जो सीट थी वो राजकोट ने जीत दिलाई थी गुजरात में, तभी से राजकोट गढ़ माना जा रहा है बीजेपी का। लेकिन आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की शाख दांव पे लगी है, सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंद्रनील राज्यगुरु लड़ रहे हैं जो कि सक्षम उम्मीदवार है। उन्हें पिछले चुनाव में उन्होंने कश्यप शुक्ला जो कि चिमन शुक्ला के बेटे थे भाजपा से उन्हीं के सामने लड़ रहे थे तो उनको बड़ी मात दी थी। तो इस तरीके से राजकोट में एक एक्साइटमेंट का माहौल है। अगर मैं बात करूं राजकोट की तो राजकोट की चार सीट जो है, राजकोट पूर्व, राजकोट पश्चिम, राजकोट रूरल और राजकोट जो दक्षिण है, तो वहां पे बड़ा कड़ा मुकाबला है। सभी जगह पे पाटीदार प्रत्याशी खड़े हैं क्योंकि सौराष्ट्र में अगर देखे जाए तो राजकोट एक गेटवे है सौराष्ट्र कच्छ रीजन का, और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो पाटीदार प्रभुत्व वाला इलाका है। लेवा पटेलों का खास करके प्रभुत्व है इस इलाके में। तो अगर आप देखने जाए तो राजकोट 68 में अरविंद रयानी के सामने मीतुल दोंगा लड़ रहे हैं, राजकोट 69 जो कि राजकोट वेस्ट में विजय रूपाणी और इंद्रनील राज्यगुरु है, पूरे राष्ट्र की नजर आज अगर देखे कहीं ना कहीं तो राजकोट 69 पे, राजकोट 69 लाइमलाइट में रहा है। जैसे अनुपम सिंह गहलोत ने हमारे साथ बात की कि 906 रैलीज हुई है यहाँ पे, सभी वीआईपी मोमेंट्स हुए हैं, तो उस तरीके से राजकोट 69, सबकी नजर राजकोट 69 पे है।
मैं
ये भी बता दूं, जी
काफी अहम है, सौराष्ट्र का प्रवेश द्वार है राजकोट, आपने लोगों से भी बात की होगी, लोगों का क्या कहना है?
लोगों का जैसे मैंने कहा ये पाटीदार प्रभुत्व वाला इलाका है सौराष्ट्र का कच्छ रीजन, अगर देखे तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द बॉल ऑफ ग्राउंडनट एंड कॉटन कल्टीवेशन। तो उस तरीके से सौराष्ट्र में कहीं ना कहीं रूरल बेल्ट जो है कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आई है, जिस तरीके का 70% का वोटर टर्नआउट रहा है, तो कहीं ना कहीं आज एक नजरिया सबका है। पहले चरण का जो चुनाव का जो जिस तरीके से एक आकलन किया गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लोगों को लग रहा था कि उनकी बात सुनी गई है, लेकिन दूसरे चरण में जिस तरीके से आकलन आए, एग्जिट पोल्स आए, तो कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। और सौराष्ट्र की अगर बात करें तो सौराष्ट्र में टोटली 11 सीट ऐसी है जिसपे कहीं ना कहीं हमको नजर रखनी पड़ेगी। राजकोट वेस्ट जहां से विजय रूपाणी और इंद्रजीत राजगुरु लड़े, पोरबंदर की सीट जहां से बाबू बोखिरिया, अर्जुन मोढवाड़िया जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके खिलाफ।
जी हिमांशु, समय की कमी है, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। गुजरात में पिछले 22 साल से राज कर रही बीजेपी को इस बार 24 साल के हार्दिक पटेल से कड़ी चुनौती मिल रही है। हार्दिक पटेल विरमगाम में रहते हैं, 19 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर की स्थापना राजा विरमदेव वाघेला ने की थी। ये जगह अहमदाबाद के करीब ही है। यहाँ पर मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता विजय सिंह परमार जो हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। विजय, कुछ ही घंटे बचे हैं जब पता चल जाएगा कि इस बार गुजरात की राजनीति हार्दिक पटेल फैक्टर, गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल फैक्टर का क्या असर रहा, उनके पैतृक गांव में कैसा माहौल है?
जी बता दें कि हमारी बीबीसी टीम कल से यहाँ विरमगाम में आई है और विरमगाम के अलग अलग इलाकों में गई, लोगों से मिली, बात की, पर हम जान के आश्चर्य हुआ कि जिस गांव से हार्दिक पटेल आए हैं पूरे गुजरात में, उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है, बीजेपी का 22 साल के शासन को हिला दिया है। नरेंद्र मोदी की सभा के ज्यादा लोग हार्दिक पटेल की सभा में आते हैं। वो हार्दिक पटेल का जो गांव विरमगाम है वहां पर उसका प्रभाव कम दिखाई देता जा रहा है। लोग बात करते हैं, लोग गौरव लेते हैं कि एक 22 साल का लड़का हमारा गांव का है, पर इस गांव में हार्दिक पटेल ने 2.5 साल में कोई रैली भी नहीं की, किए, कोई पब्लिक रैली नहीं किए, कोई मुद्दे नहीं उठाए है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हार्दिक पटेल ने पूरे गुजरात में घूम के सरकार के खिलाफ युवाओं के बारे में, खेडूतों के बारे में मुद्दे उठाए है, पर विरमगाम में उसने कुछ नहीं किया है, तो ये उसका प्रभाव यहाँ कम दिखाई देता है।
विजय, साथ ही अल्पेश ठाकुर का गांव भी पास ही है।
हम श्रोताओं को बता दें कि ठाकुर ओबीसी के लीडर अल्पेश ठाकुर जो है वो विरमगाम के बाजू में आए एंडला गांव के वतनी हैं, जो कि अब वो अहमदाबाद में रहते हैं और उत्तर गुजरात की राधनपुर की विधानसभा की सीट से वो कांग्रेस में से लड़ रहे हैं। तो दो युवा नेता विरमगाम से आए हैं जो कि गुजरात के राजकारण के फलक पर उभरे हैं, पर विरमगाम और उसके जो विधानसभा सीट है उस पर वो लोगों का कम असर दिखाई देता है। और इसकी वजह आप देख सकते हैं कि दो साल पहले जब विरमगाम तालुका पंचायत और विरमगाम नगर पालिका की जो चुटनी हुई थी उसमें बीजेपी ने की शासन है, अभी बीजेपी शासन कर रहा है, तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों नेताओं, जो युवा नेताओं का जो वतन है वहाँ उनका कोई असर दिख नहीं रहा है।
जी, यहाँ से मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस की, जो विधायक थी जिन्होंने चुनावों से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, किस तरह का वहाँ पे देखने को मिल रहा है माहौल, क्योंकि अब तो आज नतीजे भी आने वाले हैं।
कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि गुजरात की जनता ने क्या फैसला किया, क्या परिवर्तन होगा या पुनरावर्तन होगा। पर विरमगाम के लोगों ने ये बताया कि खास करके गांव के लोग तेजस्वी बहन पटेल से नाराज है, क्योंकि उन्होंने वोट दिया था तेजस्वी बहन पटेल को कि पूरी टर्म पूरी करे और उसका काम करे। बट राज्यसभा का चुनाव जब आया और अहमद पटेल के खिलाफ जब पूरी बीजेपी हुई और तब बीजेपी ने जो कांग्रेस के विधायकों का पोचिंग किया उसमें से तेजस्वीबेन पटेल खुद थी ना, अब वो भाजपा के उम्मीदवार
जी है, विजय बिल्कुल वो अब बीजेपी में चली गई हैं, तो उसका वहां पे नाराजगी देखने को मिली। खैर, आज नतीजे आ जाएंगे। अब रुख करते हैं सूरत का। सूरत यानी कपड़ा व्यापार और हीरा व्यवसाय का केंद्र, बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली ये जगह जीएसटी के कारण काफी चर्चा में रही थी। इस बार क्या दिखती है सूरत की सूरत? बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की।
कहावत है कि सूरत नो जमन काशी नो मरन, यानी कि सूरत का में खाना और काशी में मरना, यही एक सपना रहता है लोगों का। और आज मैं सूरत में उस इलाके में हूँ जहाँ बस कुछ ही दूर पर काउंटिंग का जो बूथ बनाया है गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का, जहाँ ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, खाने के पकवानों के लिए सूरत को बहुत जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ पर कुछ और भी पक रहा है। यहाँ पर अंदर एक अजीब सी उत्सुकता है लोगों के बीच में, जो चुनावी परिणाम आएंगे वो किस तरह के होंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्या लगता है आपको, ये बताइए कि अभी जो माहौल है, कितनी सीटें आएंगी, क्या पोजिशन है? ये केक वॉक था, बीजेपी का गढ़ रहा है ख़ासतौर से सूरत भी और गुजरात भी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम गढ़ रहा है, और लेकिन अभी लोग बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हुए हैं, उसमें व्यापारिक वर्ग भी है, पाटीदार लोग भी है। मुझे लग रहा है कि दोनों की बराबर की टक्कर होगी और दोनों शायद आधे आधे में सिमट जाएंगे।
और आप साहब, आपको क्या लगता है कि ये सही कह रहे हैं?
कि मेरे ख्याल से बीजेपी को 135 सीट आनी चाहिए।
अच्छा, आपका आकलन?
हाँ, मेरा आकलन है।
कांग्रेस ने कुछ नहीं किया?
कांग्रेस ने कुछ किया, उनका कोई उतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही नहीं लग रहा हमको।
क्यों आपको ऐसा लगता है, जीएसटी के बावजूद आप खुद
जीएसटी व्यापारी लोग उससे जरूर परेशान हुए, लेकिन इसका आगे जाके व्यापारी को फायदा है।
और मेरे साथ एक नौजवान पटेदार भी हैं भाई, आप बताइए कि क्या आपको
पिछले इलेक्शन के कंपेयर में 15-20 सीट कम आने का पूरा चांसेस है, क्योंकि कांग्रेस में कोई चेहरा तो था नहीं, पर एक भाजपा को दिखाने के लिए कि कांग्रेस को वोट देने में लोग पाटीदार लोग डाइवर्ट हो गए।
आपने जब से देखा होगा तो बीजेपी को ही लोग वोट डाल रहे होंगे, अब आपको कैसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक्साइटमेंट था इस बार चुनाव में कि नहीं?
एक्साइटमेंट तो नहीं था, पर ना चाहते हुए भी कांग्रेस में बटन सबकी उंगली में बटन गया है।
आप इनकी बात से सहमत हैं?
नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से बीजेपी को 120-125 सीट आने की उम्मीद है। कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी का लोगों का नरेंद्र मोदी में भरोसा बहुत ज़्यादा है, और कांग्रेस में कोई सीनियर लीडरशिप को इतना भरोसा है नहीं।
ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई सीनियर लीडरशिप नहीं है, आप कह रहे थे राहुल गांधी का इम्पैक्ट हुआ है।
बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है, लोग मोदी जी को बहुत प्रेम करते हैं, मैं खुद भी प्रेम करता हूं, लेकिन एक बार सबका नज़रिया यही है कि भाई बीजेपी को एक बार थोड़ा लगना चाहिए कि कि ताकि वो अभी जितना शिकंजा टाइट कर रही है उतना एक साथ नहीं कर सकते, इतना होना भी नहीं चाहिए।
गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी आएगी हमारे हिसाब से, कुछ दो चार सीट इधर उधर होगी।
सुना आपने कि सूरत जहां खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहां के पकवान मशहूर हैं, आज जो है सब एक उत्सुकता में बैठे हुए हैं लोग, क्या नतीजे सामने आएंगे, सबकी निगाहें उसी वक्त के लिए टिकी हुई हैं। सलमान रावी, बीबीसी सूरत।
जरा अपने घरेमान में देखो क्या हाल हो गया है आपका। मैं आज फिर चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है, आओ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो।
इस बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव दबा के लड़ रही है, मिलकर लड़ रही है, एक साथ लड़ रही है, स्ट्रेटेजी के साथ लड़ रही है। चुनाव नैरेटिव पे जीता जाता है।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, किसका दावा सही निकला, कौन गलत साबित हुआ, जानने के लिए सोमवार 18 दिसंबर को सुनिए बीबीसी हिंदी का विशेष प्रसारण सीधे गुजरात से, रेडियो, ऑनलाइन और फेसबुक पर पूरे एक घंटे, शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शाम 8 से 8:30 बजे तक ये अतिरिक्त कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शॉर्ट वेव 9540 किलोहर्ट्ज़, 5875 किलोहर्ट्ज़, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। 75 वर्षों से आपके साथ बीबीसी हिंदी रेडियो।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एक घंटे का खास बुलेटिन आज आप शाम सुन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावों के नतीजे भी आज ही आने वाले हैं। 68 सदस्यों वाली विधानसभा के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहां पर 1985 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकी है। यहां अभी कांग्रेस सत्ता में है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और उससे पहले कांग्रेस की। तो इस बार देखना यह है कि जनता हर बार की तरह सरकार बदलने के ट्रेंड को जारी रखती है या नहीं। कुछ देर पहले मैंने धर्मशाला में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार से बातचीत की और पूछा कि आज हिमाचल प्रदेश की सर्दवादियों में कुछ गर्माहट देखने को मिल रही है या नहीं।
ये ऐसे खास दिन हर 5 साल बाद आते हैं और ये कुछ इंतजार भी लंबा हो गया। मतदान 9 नवंबर को हुआ था और देखिए अब रिजल्ट अब 18 तारीख को आ रहे हैं। आज तो जाहिर है ये लंबा इंतजार है तो सभी उत्सुक है परिणाम को लेकर। आज का जो दिन है हिमाचल प्रदेश में वो एक परंपरा के टूटने या रहने का फैसला होना है। असल में यहाँ पे 1985 से लेकर आज तक कभी भी किसी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। एक बार भाजपा की सरकार बनती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है। तकरीबन 6 चुनाव ऐसे हो गए हैं। आज अगर भाजपा की सरकार बनती है तो परंपरा कायम रहेगी और कांग्रेस रिपीट कर पाई तो परंपरा टूट जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा क्षेत्र है और बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए। कुल 12 जिले हैं लेकिन करीबन आधी सीटें 3 जिलों में है। इसमें कांगड़ा में 15 है, मंडी में 10 है और शिमला में 8 सीटें हैं। तो एक तरह से मैं कहूं कि जैसे हिस्ट्री रही है यहाँ पे कि सत्ता की चाबी यहाँ 25 विधायकों वाले या 25 सीटों वाले कांगड़ा और मंडी के पास रहती है। तो लबोलुआब कुछ इस तरह का है कि कांगड़ा और मंडी जीत लिया तो समझो कि आप सत्ता पे काबिज हो गए हैं। दूसरा, इस चुनाव में जो मुझे मेरा अपना मानना है कि इस बार कोई लहर नाम की चीज ऐसी कोई नजर नहीं आई। कोई बड़ा ऐसा मुद्दा था भी नहीं जिसको आप प्रादेशिक मुद्दा कहें कि आप उसके ना पे आप जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक तरह से चुनाव सभी हलकों में स्थानीय मसलों और समीकरणों के हिसाब से लड़े गए हैं। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो परिणाम बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होते हैं और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में भी चौंकाने वाले ही रहेंगे। 22-23 सीटें तो ऐसी यहाँ नेक टू नेक जैसे फाइट में फंसी हुई है और उसमें कई दिग्गज फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा।
यानी कि जो 22-23 सीटें आप बता रहे हैं फंसी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो पलट भी सकते हैं।
मैं असलियत आपको ये बताता हूँ हिमाचल प्रदेश को लेकर कि यहाँ पे हर पिछले दो चुनाव के मैं अगर आंकड़ों की बात आपके सामने करूँ कि 4-5% जो वोट शेयर है ऊपर नीचे होने से ही सत्ता इधर की उधर हो जाती है सारी। 2012 में कांग्रेस जीती तो भाजपा से उसे तकरीबन 4% ज्यादा वोट मिले लेकिन सीटों का अंतर 10 का था। अच्छा, अब वही 2007 में भाजपा को कांग्रेस से 5% ज्यादा वोट मिले, लेकिन सीटों का अंतर 17 का था। तो इस बार भी वोट शेयर यहाँ ज्यादा नहीं रहने वाला, ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला दोनों पार्टियों के बीच में। बस देखना अब यह है कि सीटों के रूप में ये किस 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 आंकड़े को छूता है। पिछली बारी भी मैं कहूं कि 7-8 सीटें ऐसी थी जो कि 1000, 1500, 2000 की कम मार्जिन से हार जीत हुई थी, कोई 22 वोटों से, कोई 105 वोटों से, 10 वोटों से। तो इतना जब नैरो वो रहता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो हम कोई दावे से कह सकते हैं कि हाँ जी ये इतनी सीटें इस तरफ को चली जाएगी, इतनी सीटें इस तरफ को चली जाएगी।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनका ये आखिरी चुनाव है, तो एक तरह से उनके युग का अंत भी इस चुनाव के साथ होगा।
कांग्रेस के दिग्गज, आपने कही वीरभद्र सिंह की बात, वो इस बारी उनका आखिरी चुनाव है और अभी वो इस वोटिंग के बाद घोषणा भी कर चुके कि मैं अब ये आगे चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। और आप ठीक कह रहे हैं कि एक वीरभद्र युग का अंत है कांग्रेस में भी और प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि भाजपा में भी चुनाव के दौरान बहुत सारे संकेत देखने को हमें मिले हैं, तो इसलिए लगता है कि हार जीत के बावजूद हिमाचल प्रदेश में संगठन के हिसाब से, संगठनात्मक तौर पर दोनों पार्टियों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे और एक नई पॉलिटिक्स शुरू होगी हिमाचल प्रदेश में आज के परिणाम के बाद।
तो कुछ ही देर में चुनाव परिणाम आना शुरू हो जाएंगे और स्थिति दोनों राज्यों में साफ हो जाएगी। वक्त है अखबारों की समीक्षा का। हमारे साथ मोहम्मद शाहिद अखबारों के साथ हाजिर हैं। क्या कहते हैं आज के अखबार?
आदर्श, जिस तरीके से हमने देखा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के परिणाम आने वाले हैं, तो हर अखबार में यही खबर है। पहले पन्ने पर हिंदुस्तान की पहली खबर है, नतीजों से पहले ईवीएम पर्रार, हार्दिक पटेल ने ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है। जब परिणामों की बात हो रही है तो एक परिणाम का भी जिक्र कर ही लेते हैं साथ साथ। कांग्रेस को कुछ खुशखबरी मिली है पंजाब से। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पंजाब में निकाय चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उसने पटियाला, अमृतसर और जालंधर के नगर निकाय चुनावों को जीत लिया है
जी।
राजसमंद में मुस्लिम मजदूर की हत्या के मामले में इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि शंभूलाल रैगर जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद की हत्या करना चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पेज पर हेडिंग है, जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हिंदू नहीं है अल्पसंख्यक। इसके अलावा इसी अखबार पर एक दूसरी खबर है कि मोदी सरकार बीपीएल पेंशन को बढ़ाकर इसकी राशि 1500 रुपये प्रति माह कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर है कि एक अध्ययन से पता चला है कि जो जज होते हैं वो न्यायालय का 55% समय प्रशासनिक कार्यों में करते हैं, एक अध्ययन से इसका जिक्र मिलता है
जी।
और एक इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर है, बड़ी दिलचस्प है, और वो ये है कि आरटीआई के हवाले से पता चला है कि 2015 से 17 के दौरान जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में सांप पकड़ने वाले लोगों को 50 लाख रुपए से अधिक रकम का भुगतान किया गया था। ये उस दौरान का एक आंकड़ा दिया गया है
जी, जी। शुक्रिया शाहिद। चलते चलते एक खबर नज़र में आई, वो ये कि मंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो अनिवार्य हो। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात कही है, कृष्णमूर्ति ने। तो इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान टेलीविजन इंटरव्यू देने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिए गए कारण बताओ नोटिस को चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि उसकी खुफिया एजेंसी ने रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग के एक गिरजाघर पर हमले की योजना को नाकाम करने में मदद की थी। दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष सिरिल रामाफोसा और पूर्व विदेश मंत्री गोसाजाना लमिनी जुमा को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए औपचारिक रूप से नामांकित किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्डोगान ने कहा है कि वह फलिस्तीनियों के लिए पूर्वी यरूशलम में दूतावास खोलना चाहते हैं। चिली के राष्ट्रपति चुनाव में रूढ़िवादी अरबपति सेबास्तियान पिनियारा ने जीत दर्ज की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया नवीन नेगी ने। शाम 7:30 बजे गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गुजरात से एक घंटे का स्पेशल बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।